ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Krishna consciousness as given to us by Srila Prabhupada is unlike an ordinary religion, or even unlike Krishna consciousness as given by others, in as much as perfection is required.
Krishna Bhavanamrut जो हमें श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया है, ये एक सामान्य धर्म से भिन्न है, या जितनी पूर्णता जरूरी है उसकी तुलना में अन्यों के द्वारा जिस प्रकार का कृष्ण भावनामृत दिया गया है, वो श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया कृष्ण भावनामृत से भिन्न है।
It's not enough just to be a member of an institution or to identify oneself with a religion. I am a Christian, I am a Muslim, I am a Hindu or whatever.
ये केवल एक संस्था के सदस्य बन जाने जैसा नहीं है, या अपने आप को किसी धर्म जैसा क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू या इस प्रकार से दर्शाने जैसा भी नहीं है।
But there is the pushing for perfection, and anything less than that is considered improper. Of course, some lenience is there. It's not expected that everyone can come to the perfect stage immediately.
Isme swayam ko purnata ki aur badhana hai, va kisi bhi prakar ka chota vichar ise apurna karta hai. Ha, isme thodi saumyata zarur hai. Pratyek jaldi se purnata tak pahunch jaye aisa nahi mana ja sakta.
But sincerity is required, this sincere effort, constant ongoing effort for personal purification. So it is very demanding.
परंतु गंभीरता जरूरी है। इसमें गंभीर प्रयास व लगातार चलता प्रयास जो स्वयं के शुद्धिकरण के लिए हो, उसकी बहुत मांग है।
We shouldn't be surprised if many people do not take to Krishna consciousness, although that we desire that many people should do.
हमें ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ज्यादा लोग कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाते, हालांकि हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग कृष्ण भावनामृत को अपनाए।
But considering the nature of this world, the nature of material bondage, and considering that it is the process of Krishna consciousness very demanding.
पर इस जगत की प्रकृति का विचार करते हुए और भौतिक बद्धता का स्वभाव का विचार करके हम देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया की काफी मांग है।
One is expected to act in a manner for purification at every moment.
ऐसी आशा की जाती है कि कोई शुद्धिकरण के लिए कार्य करे, वह भी हर समय।
What are considered normal or acceptable motives among non-devotees? It's not acceptable among devotees to have any measure of personal indulgence or exploitation of others, even at any level, is not acceptable. It's an impurity.
जो अभिप्राय अभक्तों के लिए सामान्य या मानने योग्य होते हैं, वे भक्तों के बीच मानने योग्य नहीं होते। अतः स्वयं को लाभ देने वाले विचार या कार्य किसी भी स्तर पर भक्त के लिए मान्य नहीं होते, ये स्वीकार करने लायक नहीं है, ये अशुद्ध है।
Some quotations from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada wrote in a letter. There are two verses in the Chanakya Shloka, how a family or an institution can be glorified or burned into ashes by one person.
Srila Prabhupada द्वारा दिए गए कुछ उद्धरण इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उन्होंने एक पत्र में लिखा कि चाणक्य के श्लोक में दो पंक्तियां हैं, हमारा परिवार या संस्था एक व्यक्ति के द्वारा गौरवान्वित हो सकता है या जलकर राख में परिवर्तित हो सकता है.
Srila Prabhupada is talking about his disciples. How a good disciple can glorify, can bring a good name to a family or an institution.
Srila Prabhupada अपने शिष्यों के बारे में बात कर रहे हैं कि एक अच्छा शिष्य एक परिवार या संस्था को गौरवान्वित कर सकता है या अच्छा नाम दिला सकता है.
Whereas a bad one can bring a bad name.
जबकि एक खराब शिष्य खराब नाम ला सकता है.
So Srila Prabhupada continues. The Chanakya Pandit says that if there is one tree in the forest producing a nice aromatic flower, that one tree can glorify the whole forest by the flavor of its flower.
अतः श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि चाणक्य पंडित ने कहा कि यदि कोई एक पेड़ अच्छा खुशबूदार फूल उत्पन्न करता है तो वह एक पेड़ पूरे जंगल को अपने फूलों की खुशबू से गौरवान्वित कर सकता है.
The whole area, you may say, oh, what a nice forest this is. The whole area is smells so sweet. Just because of one tree producing beautifully smelling flowers.
पूरा क्षेत्र, अर्थात पूरा क्षेत्र ही मधुर सुगंध से महक जाता है. वह भी केवल एक पेड़ के सुंदर खुशबूदार फूल उत्पन्न करने पर.
Similarly, if there is one tree in whose cavity there is a little fire, that one tree can burn into ashes the whole forest.
इसी प्रकार एक पेड़ जिसके खोल में एक छोटी सी आग हो, वह एक पेड़ पूरे जंगल को आग से राख में बदल सकता है.
In a family, if there is one good boy, he can glorify the whole family. And similarly, if there is a bad boy, he can turn the whole family into ashes.
एक परिवार में एक अच्छा लड़का हो, तो वो पूरे परिवार को गौरवान्वित कर सकता है. इसी प्रकार, एक खराब लड़का पूरे परिवार को राख में बदल देता है.
Similarly, in this institution, if there is a bad disciple, he can burn the whole institution into ashes.
इसी प्रकार, इस संस्था में भी यदि खराब शिष्य है, तो वह पूरी संस्था को जलाकर राख में बदल सकता है.
The governing body commission's duty is therefore to see that every member is following the rules and regulations and chanting 16 rounds regularly on the beads.
इसलिए गवर्निंग बॉडी कमीशन का कर्तव्य ये देखना है कि हर सदस्य नीति व नियमों का पालन करते हो व 16 माला नियमित रूप से हर रोज जप माला पर करते हो.
I hope the GBC in cooperation with the sannyasis in their training program will be able to keep vigilant systematically in order to keep the society as pure as possible.
मैं आशा रखता हूँ कि सन्यासियों के सहयोग से जीबीसी उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में अच्छी निगरानी रखने में सक्षम रहे, जिससे कि समाज जितना हो सके उतना शुद्ध रहे.
There's a few words which if we would hope that if they were instituted that our society could be as pure as possible. We don't expect 100% purity in this world, but we can hope and pray for.
हम आशा रख सकते हैं कि यदि श्रील प्रभुपाद की यह आज्ञा हमारी संस्था में लागू की जाए तो हमारी संस्था ज्यादा से ज्यादा शुद्ध रह सकती है. हम ये नहीं आशा रखते हैं कि इस संसार में 100% शुद्धता हो, पर हम ऐसी आशा रख सकते हैं एवं प्रार्थना कर सकते हैं.
Not just hope and pray for, but if this order of Srila Prabhupada is instituted, then the society can be as pure as possible.
केवल आशा एवं प्रार्थना ही नहीं, यदि ये श्रील प्रभुपाद की आज्ञा है तो ये संस्था जितनी शुद्ध हो सके उतनी शुद्ध हो सकती है.
Another quotation from Srila Prabhupada. We are trying to preach this philosophy in that way. Maybe very small number. Maybe we are very small in number.
एक अन्य उद्धरण श्रील प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार है कि हम ऐसे तत्व ज्ञान इस प्रकार से देने का प्रयास करते हैं कि शायद हम काफी कम संख्या में हो.
But एकस Chandras tamohanti king na chara sahasrasaha. If there is one moon that is sufficient, what is the use of millions of stars twinkling?
Parantu ekas chandra tamohanti kim na tara ganairapi. Ki ek chandrama hi kafi hai, chamchamate hue lakho taro ki kya avashyakta hai.
So that is our propaganda. If one man can understand what Krishna philosophy is, then my preaching is successful, that's all.
Atah yah hamara prachar hai ki yadi ek vyakti samajh pata hai ki Shri Krishna ka tatvagyan kya hai, to mera prachar safal hai. Yahi kafi hai.
We don't want many millions of stars with no light. What is the use of millions of stars with no light?
हम बिना प्रकाश वाले लाखों तारे नहीं चाहते. बिना प्रकाश के लाखों तारों का क्या उपयोग है?
That is Chanakya Pandit's advice.
यही चाणक्य पंडित की सलाह है.
ब्राह्म एको गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख मूर्ख शतायरपि. One son, if he has learned, that is sufficient.
वरम एको गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख शतायरपि. एक पुत्र यदि विद्वान है तो वह काफी है.
What is the use of hundreds of sons, all fools and rascals?
जबकि हजारों पुत्रों जो सभी मूर्ख व बेवकूफ है उनका क्या उपयोग है?
एकस चंद्रस्तमोहंति नचतार सहस्रशः. One moon is sufficient to illuminate. There is no need of millions of stars.
एक चंद्रमा प्रकाश के लिए काफी है. लाखों तारों की कोई जरूरत नहीं.
Similarly, we are not after many millions of disciples. I want to see that one disciple has understood Krishna's philosophy. That is success.
इसी प्रकार हम लाखों शिष्यों के पीछे नहीं हैं. मैं एक शिष्य देखना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण का तत्वज्ञान समझता हो. यही सफलता है.
So of course there are many quotations from Srila Prabhupada. He was certainly interested in preaching Krishna consciousness very widely.
वैसे तो श्रील प्रभुपाद द्वारा काफी उद्धरण दिए गए हैं. श्रील प्रभुपाद जरूर इसमें दिलचस्प थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार बहुत विस्तार से किया जाए.
He didn't go all over the world like that, or go all around like that. That Greek philosopher, his name Dionysus, something like that, who walked around looking with a lamp in the daytime, which seems like a pretty stupid thing.
वे पूरे विश्व में इस प्रकार नहीं गए जैसे कि ग्रीक दार्शनिक गए थे. ग्रीक दार्शनिक जो दिन के समय भी दीपक लेकर घूमते थे, जो कि एक मूर्खतापूर्ण लगता है.
But when he was asked what he was doing, he said he was looking for one honest person.
जब इस ग्रीक दार्शनिक को पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने बताया मैं एक ईमानदार व्यक्ति की खोज में हूँ.
So with the idea that looking, going with a lamp in the daytime seems absurd. So the idea that he was looking for an honest person, that was just as, that's the implication.
दिन में हाथ में दीपक लेकर ढूंढना हास्यास्पद दिखता है. इसके पीछे विचार है कि वे एक प्रामाणिक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तो यही आशय था.
So Srila Prabhupada certainly wanted to preach very widely.
अतः श्रील प्रभुपाद निश्चित रूप से बहुत विस्तार से प्रचार करना चाहते थे.
And he had great faith in the holy name that people can become purified by taking to the process of Krishna consciousness.
एवं उनको विश्वास था पवित्र नामों में कि लोग पवित्र नाम लेकर शुद्ध होंगे. उन्हें विश्वास था कि कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को अपनाकर लोग शुद्ध होंगे.
At the same time, he warned that we should be very serious in our practice of Krishna consciousness.
उसी समय श्रील प्रभुपाद यह भी चाहते थे कि हम बहुत गंभीर हो हमारे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में.
Not superficial, and that even one completely sincere and pure disciple would be very pleasing to him.
बाह्य रूप से दिखावे की तरह हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं करना है. एक गंभीर शिष्य उन्हें काफी खुश करता था.
Lecturing on this theme, once he said that I would be satisfied. I don't have the quotation here. I would be satisfied if even one of my disciples was a completely pure devotee, but by my Guru Maharaj's mercy, I have many disciples who are very sincere. I'd like to, seeing many devotees here, I'd like to remind those who are not my disciples.
इस विषय वस्तु पर प्रवचन देते हुए उन्होंने एक बार कहा कि मैं संतुष्ट होऊंगा कि मेरा एक शिष्य पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बने, पर मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरे अनेक शिष्य हैं जो काफी गंभीर हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अनेक भक्त हैं जो मेरे शिष्य नहीं हैं।
Here that this everyone's welcome. If you want to come and listen, thank you very much. But I'm specifically continuing. I was addressing my disciples recently in Puri, and I'm just continuing on that theme. So I'm not. Yeah, well, you can just understand. They're specifically addressed to my disciples, because in the last year has been a difficult one for myself and others due to some dealings between certain of my disciples, which have been, frankly, quite distasteful.
उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं मेरे शिष्यों को पूरी में जो विषय के बारे में प्रवचन दे रहा था वही विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी अगर उसको सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। पिछले वर्ष मेरे लिए ये कठिन था, वह अन्यों के लिए भी कठिन था, क्योंकि मेरे कुछ शिष्यों के बीच जो व्यवहार हुआ वो बहुत तनावपूर्ण था।
So I'm addressing that here without mentioning any names or specific instances.
अतः मैं उसे यहाँ बिना किसी का नाम लिए या बिना किसी घटना को बदलाए कहना चाहूँगा।
We heard from Srila Prabhupada. He said that his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, had left this world early due to being dissatisfied with certain of his disciples.
हमने श्रील प्रभुपाद जी से सुना है कि उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस जगत को अपने कुछ शिष्यों से असंतुष्ट होने के कारण जल्दी छोड़ा।
And I often wondered about that, thinking that, well, such a towering acharya with so much to give to the world, then why should he leave?
मैं कई बार ये सोचकर आश्चर्यचकित होता था कि इतने महान आचार्य जिनके पास इस जगत को देने के लिए बहुत कुछ था वे क्यों जल्दी चले गए।
But on my own level, just not actually fit even to mention the name of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. But I can begin to get a little insight into that.
परंतु अब मेरे अपने स्तर पर ये ठीक नहीं लग रहा है कि मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम लूं, पर उसमें थोड़ा अंदर जाना चाह रहा था।
It is can be very distasteful and very disturbing when disciples who one accepts in good faith and reciprocates and they again I'm not blaming everyone by any means, but there have been some very distasteful and non-Vaishnav behavior which is just don't want to be involved with it, but on the other hand you can't avoid it.
ये बहुत खराब है कि एक भरोसा करके शिष्य को स्वीकार करें वह वे ऐसा करें। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, पर ये अवैष्णव व्यवहार था, बहुत ही खराब व्यवहार था। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, पर इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ये ठीक नहीं था।
So, Srila Prabhupada, in these quotes from Chanakya Pandit, stated that one good disciple can give fragrance to the whole forest, whereas one bad disciple or family member can destroy the whole forest.
Srila Prabhupada, Chanakya Pandit ke lekh ka uddharan karte hue kehte hain ki ek acha shishya pure jangal ko sugandhit kar sakta hai. वह एक परिवार का खराब पुत्र पूरे जंगल का विनाश कर सकता है।
So obviously the implication is that we should try, we should be careful not to be the bad follower or disciple.
अतः जरूरी है कि हम सचेत रहें कि हम बुरे शिष्य या अनुगामी न बने।
Strive our utmost to be good.
हमें अच्छे बनने का अधिकतम प्रयास करना है।
एंड Naturally, there will be some devotees who are outstanding, some who are really difficult cases, and many shades of grey in between.
और प्राकृतिक रूप से कई भक्त उन्नत होते हैं, कई वास्तव में मुश्किल भक्त होते हैं, और ज्यादा भक्त इन दोनों अवस्था के बीच वाले होते हैं.
I often, well, not often, but sometimes, have noted or observed that within the, because I moved a lot among members of the Gauriya Math when I was researching for the work on Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So I observed that within the Gauriya Math there are some very sincere and some very exalted devotees and some really difficult cases. You wonder what they're doing in as a devotee at all.
मैंने कभी कभी यह नोंद किया है, देखा है कि क्योंकि जब मैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर कार्य कर रहा था, तब मैंने गौड़ीय मठ के सभ्यों के बीच में बहुत भ्रमण किया था, तो मैंने यह देखा कि गौड़ीय मठ के सभ्यों के बीच में कई भक्त गंभीर थे, कई भक्त बहुत उन्नत अवस्था में थे, और कई भक्त सच में बहुत ही मुश्किल अवस्था में थे. आपको आश्चर्य होगा कि ये भक्त के रूप में क्या कर रहे हैं.
And some many in between, the devotees at various levels of advancement and of commitment, and it's the same in ISKCON. It's not different in that regard.
और बहुत सारे भक्त इन दोनों अवस्था के बीच में थे, प्रगति के और वचनबद्धता के विविध स्तर पर भक्त थे, और ISKCON में भी ऐसा समान था. उस मामले में ISKCON और गौड़ीय मठ में कोई भेद नहीं था.
Some very exalted and some sincere and very dedicated and committed devotees. Some who you wonder why did they ever bother putting their hand in a bead bag if they ever do. And there are many in between who are like that at various levels of commitment. Many sincerely trying. It's not that the Gauriya Math is very different from ISKCON in that regard.
कई बहुत उन्नत अवस्था में एवं सफल थे, बहुत समर्पित एवं वचनबद्ध भक्त थे. कई ऐसे थे कि आप आश्चर्य करेंगे कि क्यों वे अपना हाथ माला जोली में डालने की झंझट कर रहे थे, जबकि वे माला नहीं करना चाहते थे. और बहुत इन दोनों अवस्था के बीच में थे, वचनबद्धता के बहुत सारे स्तर थे, बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे थे. ऐसा नहीं है कि गौड़ीय मठ ISKCON से उस मामले में बहुत भिन्न है.
एंड एक्चुअली आवर जनरल एटीट्यूड शुड बी टू थिंक ऑफ ऑल डिवोटीज एज ग्लोरियस. जय भजे शे बोरो अभक्ति हीनो चा. चैतन्य महाप्रभु सेड दैट एनीवन हु वर्शिप्स कृष्णा इज अ ग्रेट पर्सन. And non-devotees, however, whatever they may be, they're all rejected.
और वास्तव में हमारा सामान्य दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हमें यह सोचना चाहिए कि यह सभी भक्त यशस्वी है. जे भजे से बड़ो अभक्ते हिनाचार. चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कृष्णा को भजते हैं वो महान व्यक्ति है, और अभक्त वो जो भी हो उसे अस्वीकृत करना चाहिए.
So our general attitude should be to glorify all devotees, but at the same time we see here in these quotations, as in many others, that we have to maintain a sense of discrimination also, to see what is actually devotional behavior, which should be encouraged, and not that everything that goes on in the name of devotion can be actually accepted as real devotion.
तो हमारा सामान्य व्यवहार सभी भक्तों का गुणगान करने का होना चाहिए, परंतु हम यह और अन्य उद्धरण में देख रहे हैं कि साथ ही साथ हमें भेदभाव की भावना को बनाए रखना है, एवं हमें यह देखना भी चाहिए कि वास्तव में वैष्णव आचरण क्या है. ऐसे आचरण को प्रोत्साहित करना है और ऐसा नहीं कि सभी चीज जो भक्ति के नाम पर चलती है उसे सच्ची भक्ति के रूप में ही स्वीकार करना है।
If we fail to discriminate between what is actual devotion and what is not devotion in the name of glorifying all Vaishnavas, then we are inviting the development of upper sampradayas or non-devotional tendencies in the name of devotional service.
अगर हम सभी वैष्णवों का गुणगान करने के नाम में सच्ची भक्ति और जो सच्ची भक्ति नहीं है उसके बीच में भेदभाव करने में असफल रहे तो हम अप संप्रदाय का विकास करने का निमंत्रण दे रहे हैं या भक्तिमयी सेवा के नाम पर अभक्तिमयी प्रवृत्ति का विकास कर रहे हैं।
Seems that especially in the modern age, especially in Kali Yuga, it's almost expected that every guru will have at least some difficult disciples, especially as there is a great push to spread Krishna consciousness widely and trying to encourage people to come into Krishna consciousness.
विशेषकर आधुनिक युग में दिखता है कि कलयुग में ऐसी आशा रखी जाती है कि विशेष रूप से सभी गुरु के पास थोड़े मुश्किल शिष्य होंगे, क्योंकि विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत का व्यापक रूप से विस्तार करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में आने के लिए उत्साहित करते हैं।
With the general understanding and hope and faith that if anyone takes to this process of Krishna consciousness, even in the beginning, if they are not very well situated, that if they adhere to the process, that gradually they can become elevated.
सामान्य समझदारी, आशा एवं विश्वास के साथ हम यह कर रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत अपनाएंगे, अगर शुरुआत में वे अच्छी तरह स्थित नहीं होंगे, फिर भी वे यह प्रक्रिया में लगे रहेंगे, तो धीरे-धीरे वे उन्नत अवस्था में आ जाएंगे।
Then we do see many cases of people who in the beginning were not very much inclined toward Krishna consciousness or maybe even inimical toward it, but who gradually by the association of devotees become devotees and very sincere and committed devotees, but nevertheless.
और हम बहुत बहुत भक्त ऐसे देखते हैं जिसमें लोग शुरुआत में कृष्ण भावनामृत के प्रति ज्यादा इच्छुक नहीं होते हैं, वे कृष्ण भावनामृत के विरोधी होते हैं, लेकिन वे भक्तों के संग से धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं और वे गंभीर एवं वचनबद्ध भक्त बन जाते हैं।
In Kali Yuga and it is almost expected that every guru will have some difficult cases.
परंतु फिर भी कलयुग में यह आशा लगभग की जाती है कि सभी गुरु के पास मुश्किल भक्त होंगे।
Recently one god brother was he was telling me about reporting to me about the situation of one of my disciples.
हाल ही में मेरे एक गुरु भाई मुझे मेरे शिष्यों में से एक की स्थिति के बारे में कह रहे थे।
And he seemed concerned that I didn't appear to be overly concerned when he was and he said that well you don't seem to be that concerned.
और वह चिंतित लग रहे थे कि मैं उस शिष्य के लिए ज्यादा चिंतित नहीं लग रहा था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप उस शिष्य के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं लग रहे हैं।
I said that well you know there's nothing much I can do if someone's decided, because the idea is there, why didn't the guru go and tell a disciple to be good?
और मैंने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अगर किसी ने सोच ही लिया है, क्योंकि विचार यह है कि क्यों गुरु अपने शिष्य को अच्छा बनने के लिए नहीं कर रहे हैं।
But those who know what should be done and what should not be done and practically make a decision to do that which should not be done, in most cases you can't do anything to change them. And I also
लेकिन वे जो जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और व्यावहारिक रूप से उन्होंने वो करने के लिए विचार कर लिया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो ज्यादातर ऐसे केस में आप उनको बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते।
Said to my god brother that it's almost expected when you initiate, it's almost expected that some percentage are going to go away।
और मैंने मेरे गुरु भाई को भी कहा कि जब आप दीक्षा देते हैं तो प्रायः यह आशा रखी जाती है कि कुछ प्रतिशत भक्त चले जाने वाले हैं।
Even at the time of initiating, we know that it's, of course, it's not destined, but practically we see that so many people take to Krishna consciousness and then they go away or they don't follow properly.
दीक्षा के समय भी हम जानते हैं और हम देखते हैं कि व्यावहारिक रूप से बहुत सारे लोग कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं और वे चले जाते हैं या वे ठीक तरह से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि यह नियत नहीं है कि वे चले ही जाएंगे।
But what I've been talking to more about here is those who, not that those who go away, but those who stay within the society of devotees and utilize the position, especially the position of being a leader at some level, to manipulate, coerce, exploit devotees, to exercise some unhealthy psychological control over them.
मैं यहाँ पर वे जो चले जाते हैं उनके बारे में नहीं अपितु उनके बारे में ज्यादा कह रहा हूँ जो भक्तों के समाज में रहते हैं और उनकी स्थिति का उपयोग करते हैं, विशेषकर किसी स्तर पर नेता के पद का उपयोग करते हैं। ऐसे पद का उपयोग करके वे भक्तों का शोषण करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं और ऐसा करके वे भक्तों के ऊपर अस्वस्थ मनोवैज्ञानिक नियंत्रण प्राप्त करने की मेहनत करते हैं।
So naturally this is a cause of concern for myself that devotees who take the position of a leader and in some ways are good at that, they have some outgoing tendencies and strong character or whatever by which they're able to at least here in India, where people are somewhat open to Krishna consciousness, able to bring people into Krishna, into some kind of Krishna consciousness.
स्वाभाविक रूप से यह मेरे लिए चिंता का कारण है कि भक्त जो नेता के पद को ग्रहण करते हैं और ऐसा करते हैं, कुछ मायनों में वे अच्छे होते हैं, उनमें अप्राप्य प्रवृत्तियां होती है, उनका व्यक्तित्व मजबूत होता है, जो भी है, ऐसे गुणों के द्वारा वे कम से कम यहाँ भारत में, जहाँ लोग कृष्ण भावनामृत के लिए कुछ हद तक खुले रहते हैं, ऐसे लोगों को किसी तरह का कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए वे सक्षम होते हैं।
I often think that devotees in India who might be thinking that they're great preachers, we should send them to Japan or America or somewhere where it's people are not. It's not nearly so easy to bring people into Krishna consciousness, and they might get some realization of how difficult it can be to preach Krishna consciousness among people who are not very inclined toward it.
मैं कई बार सोचता हूँ कि जो भक्त भारत में ऐसा सोचते हैं कि वे महान प्रचारक हैं, तो उन्हें हमें जापान, अमेरिका, जहाँ लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाना आसान नहीं है, ऐसी जगह भेजना चाहिए। जापान, अमेरिका जैसी जगह प्रचार करने से उनको अनुभूति हो सकती है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत के प्रति झुके हुए नहीं होते हैं, उनको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना कितना मुश्किल है।
और इवन इन अमेरिका मेनी पीपल मे बी एट लीस्ट समव्हाट ओपन टू इट, बट टू फाइंड people ready to make that sincere commitment to Krishna consciousness and to stay with it over the years is quite rare.
Halanki America mein kafi log Krishna bhavanamrut ke liye kuch had tak khule hain, lekin yahan bhi aise logo ko dhoondhna mushkil hai jo log gambhirta se Krishna bhavanamrut mein vachanbaddh hone ke liye और कृष्ण भावनामृत में सालों तक रहने के लिए तैयार हो, ऐसा बहुत ही दुर्लभ है।
So, yeah, very bringing people into devotional service means that we know that, especially in the beginning, it's natural there'll be some level of neophyteness, foolishness, maybe some bad behavior, but insincerity is not appreciated.
भक्तों को भक्तिमय सेवा में लाने का अर्थ है कि हम जानते हैं कि विशेषकर शुरुआत में यह स्वाभाविक है कि कुछ स्तर तक वे नवछात्रा रहते हैं, बेवकूफी करते हैं, अभद्र व्यवहार भी कर सकते हैं, लेकिन निष्ठाहीनता की सराहना नहीं की जा सकती।
But sometimes you may have to indulge such devotees, as it's like you can't control them, or they can't hear or rectify or even begin to understand in their own mind that they really need to make some change in their whole outlook.
कभी कभी ऐसे भक्तों को आपको सेवा में लगाना पड़ता है, पर आप उनका नियंत्रण नहीं कर सकते, या वे सुनेंगे नहीं या सुधरेंगे नहीं, यहाँ तक कि वे अपने मन में ऐसा समझने की शुरुआत करेंगे कि उनके पूरे दृष्टिकोण में वास्तव में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
So, what can you do? It's very difficult to know what to do when they're so convinced that what they're doing is right.
तो आप क्या कर सकते हैं? यह जानना बहुत मुश्किल है कि क्या करना चाहिए जब वे इतने आश्वस्त होते हैं कि वे जो कर रहे हैं वो सही है।
Even though it's causing disturbance, of course, causing disturbance in and of itself is not necessarily a bad thing, but causing disturbance in the progressive advancement of others' devotional service, because the whole conception of Krishna consciousness, of some psychologically maladjusted individuals, their whole conception of Krishna consciousness is blended with their own desires for being recognized and for being known as a leader or a great preacher or whatever.
वे जो कर रहे हैं वो अशांति का कारण है, फिर भी वे सही है। हालांकि अपने आप की अशांति का कारण बनना जरूरी नहीं है कि वो खराब चीज है, लेकिन दूसरे की भक्तिमय सेवा की प्रगतिशील उन्नति में अशांति का कारण बनना खराब है, क्योंकि मानसिक असमान व्यक्तियों का कृष्ण भावनामृत का संपूर्ण विचार एक नेता या महान प्रचारक और ऐसा कुछ भी रूप में पहचाने जाने की उनकी खुद की इच्छाओं से मिश्रित होता है।
So, what to do with such cases who they can't see that there's some need of rectification. They can't even begin to admit that they.
तो क्या करना है ऐसे मामलों में कि जिसमें ऐसे भक्त यह नहीं देख सकते हैं कि उनको कुछ सुधरने की आवश्यकता है, वे यह स्वीकार करने की शुरुआत भी नहीं करते हैं।
Or they may admit, but just in a, they may say, yeah, well, maybe there's something wrong, but it's not that bad that everyone's getting so upset. What's wrong with them all? They're all ganging up on me.
या वे इतना स्वीकार कर सकते हैं? वे कहेंगे कि हाँ, मुझ में थोड़ा सा दोष है, लेकिन इतना बुरा नहीं है कि जिसमें सभी इतने परेशान हो जाते हैं। उन सबको क्या हुआ है? वे सब मुझ पर एकजुट हो रहे हैं।
So, if you tell them the actual truth of their situation, they won't accept it, and then they may just go away from Krishna consciousness altogether, or they.
तो अगर आप उनको उनकी परिस्थिति का वास्तविक सत्य कहेंगे, वे उसका स्वीकार नहीं करेंगे और वे बस पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत छोड़कर चले जा सकते हैं।
They just can't admit that I need to undergo some deep reform because they're so used to being in the position of a leader and others following them and glorifying them.
वे अभी स्वीकार नहीं कर सकते कि मुझे कुछ गंभीर सुधार में से गुजरने की जरूरत है क्योंकि ऐसे भक्त को नेता के स्थान पर होने का अभ्यास हो गया है सभी उनका अनुसरण कर रहे हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं
नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट दे आर लिविंग ऑन दैट ग्लोरिफिकेशन एंड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लीडर नॉट that their leadership in Krishna consciousness is actually meant for the prime motive is not to selflessly serve the mission of Srila Prabhupada.
वे पहचान नहीं पाते हैं कि वो प्रशंसा के ऊपर और नेता होने का एहसास के ऊपर जी रहे हैं वे पहचान नहीं पाते हैं कि कृष्ण भावनामृत में उनकी नेतागिरी ऐसा सबके लिए नहीं है वे पहचान नहीं पाते हैं कि उनकी नेतागिरी का मुख्य उद्देश्य श्रील प्रभुपाद के मिशन की निस्वार्थ सेवा करना है
एंड द प्राइम मोटिव इज नॉट टू बेनिफिट अदर्स बाय गिविंग देम कृष्ण कॉन्शियसनेस
और उनका मुख्य उद्देश्य यह नहीं होता कि दूसरे को कृष्ण भावनामृत देकर उनका लाभ करना
दैट मे बी देयर बट इट्स मिक्स्ड विद द होल फीलिंग ऑफ being a leader, being a controller, and being recognized and honored by others, which all motives which are quite opposite to that of pure devotional service.
ऐसा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यह नेता बनने की, नियंत्रण बनने की और दूसरों द्वारा मान्यता प्राप्त और सम्मानित किया जाने की पूरी भावना से मिश्रित होता है। ऐसी मिश्रित भावना वाले सभी उद्देश्य शुद्ध भक्तिमय सेवा के उद्देश्य से विपरीत होते हैं
सो दोज वर लीडर्स द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अ लीडर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज दैट वन शुड बी अ वेरी गुड फॉलोअर वन शुड आइडेंटिफाई वन सेल्फ प्राइमरली एज ए फॉलोअर एज ए डिसाइपल
नेता की पहली योग्यता है कि वो कृष्ण भावनामृत में एक बहुत अच्छा अनुसरण करने वाला हो व्यक्ति को अपने आप को मुख्य रूप से शिष्य के रूप में अनुगामी के रूप में पहचानना है
एंड इफ वन इज गिवन द सर्विस टू लीड अदर्स बट ही शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज लीडिंग देम इन फॉलोइंग ही इज हिमसेल्फ इज ही नेवर सीज टू बी अ फॉलोअर He never ceases to be a disciple and a follower.
अगर व्यक्ति को दूसरे का नेतृत्व करने की सेवा दी गई है तो उसे यह समझना है कि उसे उनका नेतृत्व अनुगमन करके करना है ऐसा नेता अनुयायी होना समाप्त नहीं करेगा वो कभी भी शिष्य होना समाप्त नहीं करेगा
Those who, without being good followers, become leaders, they simply spread their anartas and implant their anartas into others in the name of Krishna consciousness.
वे जो अच्छे शिष्य बने बिना नेता बन जाते हैं वे केवल उनके अनर्थ का विस्तार करेंगे और उनके अनर्थ कृष्ण भावनामृत के नाम पर दूसरे के भीतर बहाएंगे
Recently in a conversation with a God brother, he mentioned talking about gurus with very wide, geographically widespread disciples.
थोड़े समय पूर्व गुरु भाई के साथ हुए वार्तालाप में उसने जिक्र किया उन्होंने जिनके शिष्यों भौगोलिक रूप से व्यापक विस्तार में फैले हुए हैं ऐसे गुरुओं के बारे में बताया
He said that the emperor is never in full control of his empire. That is a fact of political science.
उन्होंने बताया कि सम्राट कभी भी अपने साम्राज्य का पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकता मैं अनुमान करता हूँ कि आप इसे राजनीतिक विज्ञान का एक सत्य कह सकते हैं
So of course, nowadays we don't have empires in the sense that were common in the world until fairly recently the last great empire was the British Empire.
बेशक वर्तमान काल में हमारे पास साम्राज्य नहीं है, ये अर्थ में कि जब तक हाल ही में अंतिम महान साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य था, तब तक जगत में साम्राज्य आम बात थी।
But the very fact that it's very widely spread means that there will be in far-flung corners, especially in far-flung corners of the empire, there will always be local leaders who are supposed to administer on behalf of the emperor.
लेकिन व्यापक रूप से फैला हुआ का मतलब है कि साम्राज्य का सुदूर कोने में विशेष रूप से हमेशा एक स्थानीय नेता होता था जो सम्राट की ओर से प्रशासन करते थे।
But because the emperor is far away and cannot supervise or control a leader in a far away spot,
क्योंकि सम्राट बहुत ही दूर स्थित होते थे और वे बहुत दूर स्थान पर रहने वाले नेता का निरीक्षण या नियंत्रण नहीं कर सकते थे।
Then the leader himself may just give nominal respect to the emperor far away in London.
फिर नेता स्वयं सम्राट को, जो बहुत दूर लंदन में रहता था, उसको केवल नाम मात्र सम्मान देता था।
While meanwhile acting practically as an individual despot, or may just secede from the empire altogether. So it's very difficult.
इस समय में वो नेता वास्तव में एक व्यक्तिगत स्वेच्छाचारी शासक के रूप में कार्य करता था। अभी पूरी तरह साम्राज्य के बीज उसमें देख सकते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है।
Just as it's very difficult to hold an empire together, so similarly, when a guru has many disciples, and especially if they're geographically widely spread, it is difficult to keep on top of them.
जैसे एक साम्राज्य को एक साथ रखना बहुत ही मुश्किल है, वैसे ही जब एक गुरु के बहुत ही शिष्य होते हैं और विशेषकर भौगोलिक रूप से व्यापक रूप से शिष्य फैले हुए होते हैं, तो उन सब पर ध्यान रखना मुश्किल हो जाएगा।
Of course, it's not exactly like a political arrangement, but the analogy is close enough.
बेशक राजनीतिक व्यवस्था के जैसा ही यह नहीं होता है, लेकिन यह समानता काफी करीब है।
That the individual, it has to be that individual in such a situation that individual local leaders will take charge of others and local leaders are required.
ऐसी परिस्थिति में व्यक्तिगत स्थानीय नेता दूसरों का उत्तरदायित्व लेंगे और इस परिस्थिति में स्थानीय नेता आवश्यक है।
But the tendency to misuse that confidence that is placed in them, that can, and as we have recently seen, can be a cause of much disturbance.
लेकिन उन पर जो भरोसा रखा गया है, उसका दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति ज्यादा अशांति का कारण बन सकती है, और ऐसे हमने हाल ही में देखा है।
So the first or the most important service that all leaders in Krishna consciousness can perform is more than preaching widely and, as we say, making many devotees. This idea, I am making devotees. So more, the first thing is our own purification, self-purification.
तो कृष्ण भावनामृत में सभी नेता प्रथम या सबसे महत्वपूर्ण सेवा अदा कर सकते हैं, वो है अपने आप का शुद्धिकरण, स्वयं का शुद्धिकरण, या व्यापक रूप से प्रचार करना और बहुत भक्त बनाने से भी अधिक सेवा है। क्योंकि ऐसा नेता समझते हैं कि मैं भक्त बना रहा हूं.
Yes, so the first service that every devotee has to do, especially those who are taking on this very heavy responsibility of guiding others in Krishna consciousness, is to ourselves introspect, to be strong in spiritual life.
तो प्रथम सेवा जो सभी भक्तों को करनी है, विशेष रूप से वे भक्तों जिन्होंने दूसरों को कृष्ण भावनामृत में मार्ग दिखाने की बहुत भारी जिम्मेदारी ली है, उनको अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना है, आध्यात्मिक जीवन में मजबूत बनना है.
Srila Prabhupada in this quotation that I just read about the one good disciple can glorify an institution, one bad disciple can destroy it.
जैसे श्रील प्रभुपाद ने इन उद्धरण में कहा जो मैंने अभी पढ़ा था, एक अच्छा शिष्य पूरी संस्था को गौरवान्वित कर सकता है और एक बुरा शिष्य उसका नाश कर सकता है.
Therefore, Srila Prabhupada said, the governing body commission in association with the sannyasis should be very vigilant to see that all the devotees chant 16 rounds and follow the four regulated principles.
इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था गवर्निंग बॉडी कमीशन सन्यासी के साहचर्य में बहुत ही चौकन्ने होकर देखें कि सभी भक्तों 16 माला का जप करें और चार नियामक सिद्धांतों का पालन करें.
And of course, apart from this, Srila Prabhupada, he also gave other formulae, rising early, attending classes, and so on. These are necessary for purification. This comes first. Both are required. Both preaching and proper behavior in devotional service.
बेशक इसके अलावा श्रीला प्रभुपाद ने दूसरे सूत्रों भी दिए हैं, जल्दी उठना, प्रवचन क्लास में जाना इत्यादि. यह सब शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है. यह प्रथम होना चाहिए. भक्ति में दोनों जरूरी है.
प्रचार करे कहो ना करे आचार, आचार करे कहो ना करे प्रचार, आचार प्रचार नाम करो द्वि कार्य, तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत है आर्ज. Sanatan Goswami said to Haridas Thakur that some people preach but they don't assiduously practice devotional service. Some they are very strong in their sadhana but they don't preach much.
Prachara kare kehe na kare achar, achara kare kehe na kare prachar, achara prachara namer karah dui karya, tumi sarva guru tumi jagatera arya. Sanatan Goswami ne हरिदास ठाकुर को कहा कई भक्त प्रचार करते हैं लेकिन वे भक्ति का अभ्यास आचरण बहुत दृढ़ता से नहीं करते हैं. कई भक्त अपनी साधना में बहुत ही मजबूत है लेकिन वे ज्यादा प्रचार नहीं करते.
But Sanatan said to Haridas Thakur that you do both, therefore you are the guru of everyone, you're the best person in the world.
लेकिन सनातन ने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप यह दोनों करते हैं इसलिए आप सर्व के गुरु हैं और विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो.
I'm going to read now from the writings of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his commentary on Chaitanya Bhagavat Antyakanda chapter 7 text 36.
मैं अभी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लेखन को पढ़ने जा रहा हूँ जो उन्होंने चैतन्य भागवत के अंत्यखंड अध्याय 7 श्लोक 36 के ऊपर अपने भाष्य में लिखा है.
In this verse, the word ekanta das is used. So commenting on this, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, the phrase ekanta das or unalloyed servants refers to those who do not have and never will have separate interests.
यह श्लोक में एकांत दास शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसके ऊपर भाष्य करते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं एकांत दास या विशुद्ध सेवक शब्द उनके लिए सूचित करता है जिनका कोई अलग स्वार्थ नहीं होता है और जिनका कोई अलग स्वार्थ कभी भी नहीं होगा।
Many business minded people with incomplete vision oppose the eternal master servant relationship.
कई व्यापारी दिमाग वाले लोग अपूर्ण दृष्टि के साथ शाश्वत गुरु शिष्य के संबंध का विरोध करते हैं।
Their service is hardly unalloyed. Their deceitful display of opportunistic service is a manifestation of cheating, not of pure devotional service. It's very heavy words.
उनकी सेवा मुश्किल से विशुद्ध होती है, वे धोखेबाज है। अवसरवादी सेवा की उनकी यह प्रार्थना शुद्ध भक्ति की नहीं अपितु छल की अभिव्यक्ति है। यह बहुत ही भारी शब्दों है।
That he say, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is commenting here that some persons, they appear to be practicing devotional service, but they have separate interests. They're business minded, not devotionally minded, business minded.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur यहाँ भाष्य दे रहे हैं कि कुछ लोग भक्ति का अभ्यास कर रहे हो ऐसा लगता है, लेकिन उनका अलग स्वार्थ होता है। वे भक्तिमय दिमाग वाले नहीं परंतु व्यापारी दिमाग वाले होते हैं।
In other words, they are performing some activity with the mentality of how can I gain from it.
दूसरे शब्दों में वे उस मनोवृत्ति से कुछ कार्य कर रहे हैं कि कैसे मैं इसमें से लाभ प्राप्त करूं।
In a material, in a mundane way.
एक दुनियावी तरीके से।
So they actually oppose the eternal master-servant relationship, even if superficially they act in that relationship.
तो वे शाश्वत गुरु-शिष्य संबंध का वास्तविक विरोध करते हैं, भले ही वे ऊपर-ऊपर से गुरु-शिष्य संबंध में कार्य करते हो।
And he refers to it as a deceitful display of opportunistic service, that is a manifestation of cheating.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur इसे अवसरवादी सेवा का धोखेबाज प्रदर्शन के रूप में सूचित करते हैं। ऐसा प्रदर्शन छल की अभिव्यक्ति है।
So, continuing. Living entities averse to the service of the Lord exhibit samples of eternal service for as long as it suits their desires.
जारी रखते हैं। सबसे खराब जीव भगवान की सेवा में शाश्वत सेवा का आदर्श प्रदर्शन तब तक करते हैं जब तक ये उनकी इच्छाओं को अनुकूल होता है।
But the moment their sense gratification is disturbed, they immediately give up service and begin to harass and rebel against their master by posing themselves as masters.
लेकिन जैसे ही उनकी इंद्रिय तृप्ति में भंग होता है तो वे तुरंत ही सेवा छोड़ देते हैं और अपने आप को गुरु के रूप में प्रस्तुत करके उनके गुरु को परेशान करना और उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देते हैं।
And again, without getting into details, I found this description quite apt of certain persons who were apparently performing some service, but then when it became detected that they had some other motive and they were checked in that, then they immediately give up their that service and begin to harass and rebel against their master by posing themselves as masters.
और फिर से मैं विस्तार में गए बिना बताता हूँ, यह वर्णन मैंने कुछ लोगों में बिल्कुल उपयुक्त पाया। वे लोग प्रत्यक्ष रूप से कुछ सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ऐसा पता चला गया कि उनके पास कुछ दूसरा उद्देश्य है और उनको जब उसमें रोका गया तो उन्होंने वो सेवा तुरंत छोड़ दी और अपने आप को गुरु के रूप में प्रस्तुत करके उनके गुरु को परेशान करना एवं उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया।
I'm going to read now for a quotation from writings of Suhotra Maharaj, who is quoting Srila Jiva Goswami.
मैं अभी सुहोत्र महाराज के लेखन से उद्धरण पढ़ने जा रहा हूँ। सुहोत्र महाराज श्रील जीव गोस्वामी का उद्धरण देते हैं।
Srila Jiva Goswami warns in his Bhakti Sandarbha that there are offenders to the holy name who are अचिकित्स्य और इनकॉरिजिबल।
श्रीला जीव गोस्वामी उनके भक्ति संदर्भ में चेतावनी देते हैं कि पवित्र नाम के कुछ अपराधी होते हैं, वे अचिकित्स्य अथवा असुधार्य होते हैं।
I remember that I discussed this once with Sahotra Swami. He's very interested to hear this description. Achikitsya or incorrigible.
मैं याद कर रहा हूँ कि मैंने सुहोत्र स्वामी के साथ यह चर्चा की थी। वे यह वर्णन सुनने के लिए बहुत ही अनुरक्त थे।
ज्ञान लाभ दुर्विदग्धास्त्र अचिकित्स्य अद्वदुपेक्षा। As soon as they acquire a little knowledge from the Krishna conscious community of devotees, they become insolent and arrogant.
जैसे ही भक्तों के कृष्ण भावनामृत समुदाय से अचिकित्स्य लोग थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण करते हैं, वैसे ही वे असभ्य और अभिमानी बन जाते हैं।
They are excluded from the genuine devotional community because of three kinds of offense to the holy name. Sadhu ninda, blasphemy of devotees, guru avagya, disregard of the spiritual master, and shruti shastra ninda, blasphemy of the Vedic literatures.
Pavitra namo ke prati teen prakar ke apradhon ki wajah se ve logo ko sachche bhakti samudayi se bahar rakhe jate hain. Yah teen prakar ke apradh hai: sadhu ninda, yani bhakton ki ninda karna; guru avagya, यानी आध्यात्मिक गुरु का अनादर करना; और श्रुति शास्त्र निंदा, यानी वैदिक शास्त्रों की निंदा करना।
So Sahotra Swami goes on to comment on this. The incorrigible offender, achikitsya, is incorrigible, literally untreatable. Chikitsa means medical treatment. Achikitsya means hopeless case. So the incorrigible offender never admits his offenses. He cannot understand that the mercy of the spiritual master and the association of pure devotees are indispensable for chanting of the holy name.
Suhatra Swami iske upar tippani karte hain, asudharya, yani jiska sudhar na ho sake aise apradhi kabhi bhi apne apradh ka svikar nahi karte hain. Asudharya la ilaj hote hain. Chikitsa ka arth hai डॉक्टर इलाज, और अचिकित्स्य का अर्थ है निराशाजनक स्थिति। वे कभी भी समझ नहीं पाते हैं कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा और शुद्ध भक्तों का संग पवित्र नामों के जप के लिए परम आवश्यक है।
He considers the spiritual master not a transcendental teacher but a worldly one and tries to measure the person and instructions of the guru by his own mental standards. Thus he commits guru avagya. Because he values worldly knowledge and accomplishments.
वो आध्यात्मिक गुरु को एक दिव्य शिक्षक नहीं अपितु दुनियावी व्यक्ति समझता है, और अपने खुद के मानसिक मापदंड से गुरु के उपदेश को और व्यक्तित्व को मापने का प्रयास करता है। ऐसे वो गुरु अवज्ञा करता है, क्योंकि वो दुनियावी ज्ञान और उपलब्धि को महत्व देता है।
He looks down upon the simple devotees who have surrendered themselves to devotional service. Thus he commits sadhu ninda.
जिन्होंने अपने आप को भक्तिमय सेवा में शरणागत किया है, ऐसे सरल भक्तों को ऐसा असुधार्य व्यक्ति नीच दृष्टि से देखता है, ऐसे वो साधु निंदा का अपराध करता है।
Finally, he studies the revealed scriptures as if they were ordinary books. Accepting whatever seems to support his preconceived notions and rejecting the rest. Thus he commits Shruti Shastra Ninda, blasphemy of the Vedic scriptures.
आखिर में वो प्रकट शास्त्रों का अभ्यास ऐसे करता है जैसे मानो वे सामान्य पुस्तक है। शास्त्रों में से अपनी पूर्वग्रह धारणा का समर्थन करने वाले जो भी वचन लगते हैं उसको स्वीकार करता है और बाकी का अस्वीकार करता है। ऐसे वो श्रुति शास्त्र की निंदा यानी वैदिक शास्त्रों की निंदा का अपराध करता है।
The incorrigible offender mistakes the growth of these and other offenses within his heart for the growth of the bhakti lata, the plant of devotion.
असुधार्य अपराधी यह अपराधे और हृदय में रहने वाले दूसरे अपराधों की वृद्धि को भक्ति लता की वृद्धि मानने की भूल करता है।
He mistakes his fallen condition for great advancement. That's the end of the quote from Sahotra Maharaj.
वो अपनी पतित अवस्था को महान उन्नति की अवस्था मानने की गलती करता है। यहाँ सुहोत्र महाराज के उद्धरण का अंत हो रहा है।
So again, speaking specifically to among my disciples here, in the last few years, some of you have worked very hard and sacrificed very much to start programs for Gurukul and Varnashram, rural communities, in pursuance of some of Srila Prabhupada's cherished desires.
मैं यहाँ बोल रहा हूँ विशेषकर उपस्थित मेरे शिष्यों के लिए। पिछले कुछ सालों में आप में से कुछ ने श्रील प्रभुपाद की इच्छाओं में से कुछ इच्छाओं का पालन करने के लिए गुरुकुल, वर्णाश्रम, ग्रामीण समुदाय का कार्यक्रम शुरू करने के लिए बहुत कठिन कार्य किए हैं और बहुत ज्यादा बलिदान दिया है।
Unfortunately, there are some who practically act like enemies within our camp by discouraging others.
दुर्भाग्य से हमारी छावनी में कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में दूसरे को निरुत्साहित करके दुश्मन की तरह कार्य कर रहे हैं।
And saying don't do this, don't join a varnashram community, don't send your children to Gurukul. So in one sense we can understand their concern.
वे दूसरे को निरुत्साही करते हुए कहते हैं ये मत करो, वर्णाश्रम समुदाय में शामिल मत हो, आपके बच्चों को गुरुकुल मत भेजो। तो एक अर्थ में हम उनकी चिंता को समझ सकते हैं।
Recently I likened this to the persons in Navadvip Dham who opposed the Hindus there, who opposed Nimai Pandit Sankirtan movement. In many ways what they said would seem to be practical and reasonable.
हाल ही में ऐसे मिलते जुलते व्यक्तियों को नवदीप धाम में मैंने सदृश किया। वे हिंदू ही थे एवं निमाई पंडित के संकीर्तन आंदोलन का विरोध कर रहे थे। वे जो भी कहते थे वो व्यावहारिक रूप से कई तरह से अयोग्य दिख रहा था।
They said that if Nimai goes on with this Sankirtan, then the Muslims, they'll come down on us very heavily and we'll be in... Because of this Nimai, all of us, even those of us who are not interested in Sankirtan, will all be persecuted by the Muslims.
वे कहते थे अगर Nimai ये संकीर्तन के साथ चालू होते तो मुस्लिम हमारे ऊपर भारी हमला करते, और यह Nimai की वजह से हम सभी, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें संकीर्तन में रुचि नहीं है, वे सभी पर मुस्लिमों के द्वारा मुकदमा चलाया गया होता।
Why doesn't he just be realistic? He's going to bring a lot of trouble to us. It seems good now, but it'll be a lot of trouble.
हम वास्तववादी क्यों नहीं बनते हैं? वे हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें लाने वाले हैं। अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें होगी।
So in many ways it might have seemed that they were just being realistic and sensible, but they are described as blasphemers.
तो कई तरह से ऐसा दिख रहा है कि ये लोग वास्तववादी और समझदार होते हैं, लेकिन वे निंदक के रूप में वर्णित किए जाते हैं।
So that is comparable to those who quietly whisper in the ears of others, don't get involved in this, it won't work, you'll spoil your life, you have to, let's be real, we can chant Hare Krishna, but anyway, we should just have a job and work hard, and we can chant Hare Krishna in our spare time or whatever.
ऐसे लोग इन लोगों से तुलना योग्य है जो चुपचाप दूसरों के कानों में कानाफूसी करते हैं कि इसमें शामिल मत हो, ये काम नहीं होगा, आप अपना जीवन नष्ट कर देंगे, चलो वास्तववादी बने, हम हरे कृष्ण जप कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी हमें बस एक नौकरी होनी चाहिए और सख्त मेहनत करो और हरे कृष्ण जप करो, कैसे भी करके समय निकालो और हरे कृष्ण जप करो।
सो वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दिस प्रोग्राम्स एंड वी नो इट इज डिफिकल्ट, इट गोज अगेंस्ट द होल ग्रेन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी।
तो हम योजनाएं स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें मालूम है यह मुश्किल है, यह आधुनिक समाज के प्रवाह से विरुद्ध जाता है।
But Srila Prabhupada very much wanted this. And if we want to merge into modern society, then it is going to be very difficult to practice pure devotional service because the whole flow of modern society is away from pure devotional service toward sense gratification.
लेकिन श्रीला प्रभुपाद इस योजना बहुत चाहते थे और अगर हम आधुनिक समाज में मिल जाना चाहते हैं तो शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना बहुत ही मुश्किल बनने वाला है क्योंकि आधुनिक समाज का पूरा प्रवाह शुद्ध भक्तिमय सेवा से दूर इंद्रिय तृप्ति की ओर है।
So I would request among my disciples, if you don't like these programs of Gurukul and Varnashram and this and that, at least please don't try to discourage others from doing it.
मैं मेरे शिष्यों के बीच में अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये गुरुकुल और वर्णाश्रम इत्यादि के कार्यक्रम नहीं अच्छे लगते हैं तो कम से कम कृपा करके दूसरे को ऐसा करने से हतोत्साहित करने की कोशिश मत कीजिए।
You know, no one's forcing you, no one's pressurizing anyone to send their children to a gurukul or to go to a farm community. There's no pressure, it's all voluntary.
कोई आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं आपके बच्चे को गुरुकुल भेजने के लिए एवं आपको खेत वसाहत में जाने के लिए कोई किसी पर दबाव नहीं डाल रहा है, कोई दबाव नहीं है, यह सब स्वैच्छिक है।
If you don't like it, don't go, but please don't discourage others from, don't take it as your duty to tell others not to get involved.
अगर आपको अच्छा नहीं लगे आप मत जाइए, लेकिन कृपया दूसरे को निरुत्साहित मत कीजिए, दूसरे को इसमें शामिल न होने का कहने का आपका कर्तव्य के रूप में इसे मत समझिए।
So, thank you to the great majority of you who are endeavoring in this way to help with these projects, pushing on book distribution.
आप में से अधिकांश भक्तों का आभार जो यह परियोजनाओं में इस प्रकार मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पुस्तक वितरण को आगे बढ़ा रहे हैं।
And everyone to what extent they can do. For some devotees, practically the full extent of their devotional service is looking after their children, which Srila Prabhupada also said to one of his female disciples that who was engaged in deity worship, that after she had a baby.
सभी से जितनी ज्यादा सेवा हो सके उतनी ज्यादा सेवा करनी है। कुछ भक्तों को उनकी भक्तिमय सेवा को वास्तव में पूर्ण रूप से अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए लगाना है। जो श्रील प्रभुपाद ने उनकी महिला शिष्याओं में से एक को कहा था जो बच्चा होने के बाद श्री विग्रह की पूजा में लगी थी।
He told her that now your duty is not deity worship, it is child worship. They have to look after the children and raise them as far as possible in devotional service.
श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि अभी आपका कर्तव्य श्री विग्रह की पूजा नहीं अपितु बच्चे की पूजा है। आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चे को जहां तक संभव हो सके भक्ति में उन्नत कीजिए।
So not everyone can be performing great activities, but all activities in devotional service are great, and it is our sincerity that will be appreciated by Krishna.
तो महान कार्यकलाप सभी नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति में सभी कार्यकलाप महान है और यहाँ हमारी निष्कपटता है जिसकी प्रशंसा कृष्ण के द्वारा होगी।
आई नो सम वेरी आई थिंक वी ऑल नो सम वेरी क्वालिफाइड डिवोटीज हु नेवरदलेस डोंट इनिशिएट।
मैं कुछ बहुत योग्य भक्तों को जानता हूँ जो बहुत योग्य होने के बावजूद भी दीक्षा नहीं देते हैं।
Because one of my god brothers, I asked him, why don't you initiate? He said, it's so much headache. I can perform. Another of my god brothers, who I sometimes confide in, and I ask him about his advice about various things. He said, I'm just glad I'm not a guru.
मैंने मेरे एक गुरु भाई को पूछा कि आप दीक्षा क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने कहा इसमें बहुत परेशानी है। मेरे दूसरे गुरु भाई जिसको मैं कभी कभी अपने दिल की बात कहता हूँ और जिसकी मैं बहुत चीज़ों के बारे में सलाह लेता हूँ उनको पूछा। उन्होंने कहा कि मैं गुरु नहीं हूँ बस इसलिए मुझे खुशी है।
Because it's, everyone, that is the service, part of the service that one has to accept so many difficulties in one of them is in the form of difficult disciples.
ये सेवा है, सेवा का एक भाग है जिसे भक्त को स्वीकारनी है। तो बहुत मुश्किल सेवा, मुश्किल सेवाओं में से एक सेवा मुश्किल शिष्यों के रूप में है।
But I'm not blaming or accusing the majority of you who are really dedicating very sincerely in Srila Prabhupada's service and thank you very much for that.
लेकिन मैं आप में से अधिकांश भक्तों पर दोष और आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप वास्तव में श्रील प्रभुपाद की सेवा में बहुत निष्ठा से समर्पित हुए हैं और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
Promoting for several years now, more and more, is that there are so many devotees in our movement who are growing older and whose children are grown up. You don't have to go on working all your life. Once your children are settled into their adult life, the elder devotee, they can be vanaprasthas. There are many such devotees here in Mayapur. And doesn't have to be in Mayapur, can be anywhere where they can, you don't have to go on working all your life, you can come out and serve the mission of Srila Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu on a full-time basis.
वास्तव में बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं। एक बात है जिसे जय अद्वैत स्वामी कई सालों से बढ़ावा दे रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे आंदोलन में बहुत सारे भक्तों हैं जो वृद्ध हो रहे हैं और जिनके बच्चे युवा हो गए हैं। आपको अपना पूरा जीवन काम करने में ही नहीं लगाना है। जब आपके बच्चे उनके वयस्क जीवन में स्थायी हो जाए तो वृद्ध भक्तों को वानप्रस्थ बनना है। यहाँ मायापुर में ऐसे कई भक्तों हैं और जरूर नहीं है कि आप मायापुर में ही रहे। वानप्रस्थ जीवन कहीं भी अपना सकते हैं जहां आप कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर सकें। आपको अपना पूरा जीवन काम करने में नहीं लगाना है। आप लोग आगे आइए और श्रील प्रभुपाद के और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन की पूरा समय के लिए सेवा कीजिए।
इफ यू नो लॉन्गर हैव डायरेक्ट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अमंग My disciples, there are several who have done that. They've retired from the working life early and are fully engaged in Krishna's service. And those of you who have the financial means to do so, you can, even before your children, there are not so many like that, but even before your children are married and settled or whatever, You can come out and serve the mission full time. There's a lot of work to do.
अगर आपको प्रत्यक्ष परिवार की जिम्मेदारी अब नहीं है, तो आप अपने कामकाजी जीवन से निवृत्त हो और
कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लग जाए। मेरे शिष्यों में से कई ने ऐसा किया है और जो भक्तों का आर्थिक साधन ऐसा करने के लिए उपर्युक्त मात्रा में है तो वे अपने बच्चे विवाहित हो या स्थायी हो उससे पहले वे निवृत्त हो सकते हैं और मिशन की पूर्ण समय की सेवा में लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, हमारे जीवन में ज्यादा समय नहीं है।
Hani hani bhutani gachanti hayam alayam. People are going to hell every day, and we have to do whatever we can to try to help them by bringing them to Krishna consciousness.
Hani hani bhutani gachanti hayam. लोग हर रोज नरक में जा रहे हैं और हमसे जो कुछ भी हो सके वो करके उनको कृष्ण भावनामृत में लाकर उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए।
यदि हमारा प्रति स्नेह थाके सबा का तबे कृष्ण व्यति रिक्त न गाय भया। दैट इज द अल्टीमेट गोल। चैतन्य महाप्रभु टू ऑल द डिवोटीज हु वुड कम टू सी हिम एक्सप्रेसिंग ग्रेट अफेक्शन, He would say, if you're actually affectionate to me, then please do one thing. Just talk about Krishna.
Jodi amar prati sneha thake sabakar, tabe Krishna veti riktan jaye baya. Vahi param dhyay hai. Shri Chaitanya Mahaprabhu, sabhi bhakton, jo unko milne aate the, unko mahan sneha vyakt karte the, ve kehte the, agar aap mere prati vastav mein snehi hai, to krupaya ek cheez kijiye. सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलो।
सो अल्टीमेटली वी हैव टू टॉक अबाउट कृष्ण, दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट इन द मैटर ऑफ प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियस देयर सो मेनी कंसिडरेशन, सो मेनी रॉन्ग आइडियाज, रॉन्ग फिलोसफीज टू कॉम्बैट।
तो आखिरकार हमें कृष्ण के बारे में बोलना है, यह हमें याद रखना है कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार के मामले में बहुत सारे विचार है, बहुत सारे गलत विचार है, गलत तत्व ज्ञान है जिसका विरोध करना है।
There's so many matters, legal matters and administrative matters and so many worldly matters that we have to consider, but we always have to remember that the ultimate goal is, as Srila Prabhupada often put it, is to be mad after Krishna.
बहुत सारे मामले हैं, कानूनी मामला, प्रशासन का मामला, बहुत सारे दुनियावी मामले जिसका हमें ध्यान रखना है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि परम उद्देश्य जो श्रील प्रभुपाद अक्सर उद्धरण करते थे वो है कृष्णा के पीछे पागल बनना।
सो इन आवर मेनी एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड इन प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियस, Let us always remember that the real point of it all is that we are to manmana bhava madbhakto madhyaji maang namaskaru, to think of Krishna, be his devotee, bow down to Krishna, worship Krishna.
तो हमारी अनेक गतिविधियां जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में जरूरी है, चलो हमेशा याद रखें कि ये सबका असली मुद्दा यह है कि हमें मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कृष्ण का चिंतन करना, उनके भक्त बनना, कृष्ण को नमस्कार करना और कृष्ण की पूजा करना, ये याद रखना है हमें।
एंड टू प्रीचिंग मींस टू गिव अदर्स द ऑपर्चुनिटी टू डेवलप दैट कॉन्शियसनेस आल्सो।
और प्रचार का अर्थ है दूसरों को भी उनकी चेतना का विकास करने का अवसर देना।
So Hare Krishna, I finished earlier than I thought I would. So if there are any questions, please ask now. Hare Krishna.
Hare Krishna. Kuch prashno hai, to krupaya puchhiye.
Yes, please. Do we have another microphone? Just waiting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Or you can tell me and I'll repeat it. In the matter of correcting senior devotees, all those who consider themselves senior, it may be required for a devotee in the kind of situation that you're in, a position of responsibility for a particular project. You may feel that you have to do so, because can you give an example? There may be millions, but I can't think of any just right now. Someone who is senior and is respected, but actually there are clear symptoms according to Shastra that he is somewhat deviated from the proper line of Krishna consciousness. And other seniors see that, but they don't say anything. What to do?
कुछ जो वरिष्ठ होते हैं और सम्माननीय होते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट लक्षण होते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत के उचित पथ से थोड़े से भटक गए हैं, और दूसरे वयस्क भक्त यह देखते हैं लेकिन कुछ भी कहते नहीं है, तो इसका क्या करना है?
What should we do? I'm still asking the same question myself.
हम क्या कर सकते हैं? यही प्रश्न अब तक मैं अपने आप को पूछ रहा हूँ.
I thought you were talking about at the very high levels here, is it mostly?
मैं सोचता हूँ कि आप बहुत ऊंचे स्तर के लिए बात कर रहे हैं, नहीं क्या?
Many years ago, again talking about Suhotra Swami, I told you this before also. When he was chairman of the GBC, probably many devotees have never heard of Suhotra Swami. He passed away and he's not much glorified. anyway, he was chairman of the GBC at that, and I happened to meet him in some small town in Poland where he was hiding out, you could say, at some Namhata to do some writing. And somehow or other, I also went there. It was some strange coincidence.
यह मैं सुहोत्र स्वामी के बारे में कह रहा हूँ. यह मैंने आपको आगे भी कहा था. बहुत साल पहले सुहोत्र स्वामी जीबीसी के अध्यक्ष थे. शायद बहुत भक्तों ने सुहोत्र स्वामी का नाम नहीं सुना होगा. उनका देहांत हो गया है और वे ज़्यादा गौरवान्वित नहीं किए गए. जो भी है, वे उस समय जीबीसी के चेयरमैन थे और मेरी मुलाकात उनसे पोलैंड के एक छोटे से गाँव में हुई, जहाँ वे कुछ लेखन कार्य करने के लिए नामहट में अपने आप को छिपा रहे थे. किसी न किसी तरह मैं भी वहाँ पहुँच गया था, कुछ अजीब संजोग.
So in the course of discussing, I said to him that, you know, there are so many, it's happens in the GBC that GBC members, sometimes they do things which even beginning devotees can understand that they shouldn't do, and it's very obvious to everyone, but the GBC members don't say anything to them. Why is that?
तो चर्चा के दौरान मैंने उनको कहा कि जीबीसी सभ्यों कभी कभी ऐसी चीजें करते हैं जो नवोदित भक्तों भी समझ सकते हैं कि ये उनको नहीं करना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए. ये सभी को स्पष्ट मालूम होता है, फिर भी जीबीसी सभ्य ऐसी चीजें करने वाले सभ्यों को कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों?
And he laughed and said that, well, when we all get together, there's this kind of collegiate spirit by which we can't correct each other. That was his answer. That we don't want to upset the friendship.
और वे हंसे और कहा कि जब हम एक साथ मिलते हैं तो उस समय ऐसी सहयोगियों की भावना होती है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को सुधार नहीं सकते. यह उनका जवाब था कि हम दोस्ती को विक्षुब्ध करना नहीं चाहते हैं.
Some devotees do that, and they're not very liked or popular for that, as Prahladananda Swami told me. He does take the trouble to approach privately and personally certain leaders and say, excuse me, there's something you should take note of. And he said that usually the effect of doing that is that he loses friends.
कुछ भक्तों ऐसा करते हैं, लेकिन वे इसकी वजह से पसंद नहीं किए जाते या वे लोकप्रिय नहीं होते हैं, जैसे प्रहलानंद स्वामी। वे ऐसा करने की तकलीफ लेते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से और एकांत में कुछ नेताओं को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने की असर है कि वे अपने मित्रों गंवा देते हैं।
But actually, if there is something which requires rectifying, and someone points that out, then we should take that person as our friend, isn't it?
लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है जिसको सुधारने की जरूरत है, और कोई व्यक्ति उस मुद्दे को दिखाता है, तो हमें उस व्यक्ति को हमारे मित्र जैसे समझना है।
It is a very difficult situation within our movement in which I just had this experience recently. One devotee told me that a devotee from Delhi told me, mentioned something about one of our big leaders. I said,
हमारे आंदोलन के अंतर्गत यह बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है। हाल ही में हुए ऐसे अनुभव को मैं आपसे बांटता हूँ। दिल्ली के एक भक्त ने मुझे हमारे एक बड़े नेता के बारे में कुछ कहा।
You know about that? He said, yeah, everyone knows about that. What do you mean everyone? I said, well, I live in Delhi and everyone I speak to, they all know about it. So it's something, I don't want to talk about it here and now.
ने उस भक्त को कहा, आप उसके बारे में जानते हैं? उसने कहा, हाँ, सभी उस बड़े नेता के बारे में हुई बात को जानते हैं। मैंने कहा, सब जानते हैं? इसका क्या मतलब है? उसने कहा, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं सभी से बात करता हूँ और वे इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं इसके बारे में अभी नहीं बात करूँगा।
Something one of our big leaders has done, which even very junior devotees can understand is something very wrong, and it circulates among them. And this devotee has asked me, what are we supposed to make of it? That it's going on and nothing is said, and life just goes on as if nothing had ever happened.
बड़े नेता ने कुछ ऐसा कार्य किया है जो एक जूनियर भक्त भी समझ सकता है कि यह बहुत ही खराब कार्य है, और सभी के बीच में यह खराब बात प्रसारित हो गई है, और यह भक्तों पूछ रहे हैं कि हमें इस बात से क्या विचार समझना है। यह चल रहा है और कुछ नहीं कहा जाता, और जीवन ऐसे ही चल रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ हो।
Create confusion and erode the faith of devotees. And another thing it may do is they may make them think, well, if the big leaders can do all kinds of nonsense, then and they lose their sense of idealism, and then they what's the use of really trying to be sincere when it's like that? Then they also become like that at their own level.
तो ऐसी बातें अव्यवस्था उत्पन्न करेगी और भक्तों का विश्वास टूट जाएगा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वे सोच सकते हैं कि बड़े नेता सभी प्रकार का अर्थहीन कार्य कर सकते हैं, और फिर वे अपनी आदर्शवाद की भावना खो देते हैं, और वे सोचते हैं कि निष्ठावान बनने का वास्तविक प्रयास करने का क्या लाभ होगा। जब ऐसा होता है और फिर वे भी अपने खुद के स्तर पर ऐसे ही बन जाते हैं।
That I've seen also.
ऐसा मैंने देखा भी है।
We're able to get away with it because one reason is because there's no big Gaudiya Math sannyasi at the moment taking away all our devotees. So that's one reason we can get. There's nowhere to go unless you want to go to Ritvikism, which is quite unattractive.
हम इससे दूर रहने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि एक कारण यह है कि अभी गौड़ीय मठ के बड़े सन्यासी कोई नहीं है जो हमारे भक्तों को ले जाते थे, तो यह एक कारण है कि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है यदि कोई ऋत्विकिज्म में जाए, जो काफी अनाकर्षक है।
So that's one reason we can get away with it, I suppose. But it's not satisfying. What should we do? Should we leaders who
तो ये एक कारण है जो मैं मानता हूँ कि हम इससे दूर रहे, लेकिन यह संतोषजनक नहीं है। हम क्या करें?
Well, what should we do? That's in the teachings of Srila Prabhupada, that conversation in which between Vinsatsuru Maharaj and Tamal Krishna Maharaja, July the 9th or something, there are some who know it very well, about the future leadership of the Krishna Conscious Movement, about gurus and initiation in Krishna Consciousness. And then Tamal Krishna Maharaj also asked about GBCs, and Srila Prabhupada said that if they, I can't remember the exact words now, but if they misbehave, then they should be replaced. He said they should all be ideal, acharya-like. I quoted that yesterday.
हम क्या करें? यह श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं में है। सत्स्वरूप महाराज और तमाल कृष्ण महाराज के वार्तालाप में, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भविष्य के नेतागण के बारे में, गुरु का दीक्षा देने के बारे में और जीबीसी के बारे में है। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूछते हैं और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अगर वे बुरा व्यवहार करते हैं तो उनको बदल देना है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वे सभी आचार्य जैसे आदर्श होने चाहिए। मैंने यह कल उद्धरण दिया था।
They should all be ideal acharya-like, and Srila Prabhupada said that for now, up to now we've been doing for working. In other words, Srila Prabhupada has overseen many discrepancies, but he said that now we should be strict.
वे सभी आदर्श आचार्य जैसे होने चाहिए, और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अब तक हम काम चलाने के लिए यह सब चला रहे हैं। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद ने बहुत असंगति की उपेक्षा की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमें सख्त बनना है।
So if leaders perform activities which, if a junior devotee did the same thing in a smaller way, they'd be kicked out of the movement and given a bad name and never allowed back. But if you're bigger, you can get away with it.
तो अगर नेता ऐसा कार्य करता है जिसे अगर एक जूनियर भक्त छोटे रूप में वही चीज करता है, तो उनको आंदोलन से बाहर निकाल दिया जाएगा और उनको बुरा नाम दिया जाएगा और उनको कभी भी आंदोलन में वापस आने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन आप बड़े नेता हैं तो यह सब चल सकता है।
One thing is, I believe there is a GBC rule, or there used to be, I don't know, but there should be, that those who are leaders at every temple, presidents, sannyasis, GBC members, whatever, that they should have visible exemplary sadhana.
एक चीज है, मैं मानता हूँ कि वो जीबीसी का नियम है या नियम होता था, ये मैं नहीं जानता हूँ, परंतु यह होना चाहिए। जो भी नेता है, मंदिर के प्रमुख है, सन्यासी है या जीबीसी सभ्य है, जो भी हो, उनकी प्रत्यक्ष दिखने वाली उदाहरणात्मक साधना होनी चाहिए।
Rising early, as Srila Prabhupada states in many letters, rise early, go to Mangalarti, chant 16 rounds and attend classes and all these things. So that should be required of all leaders. And if they don't do it, because leader means first and foremost a spiritual leader, not a manager or an administrator.
जैसे श्रील प्रभुपाद ने बहुत पत्रों में कहा है, जल्दी उठो, मंगला आरती में जाओ, सोला माला करो, क्लास में भाग लो इत्यादि, तो सभी नेताओं में यह आवश्यक है, और अगर वे यह नहीं करते हैं तो वे दूसरे को प्रेरणा नहीं दे सकेंगे। नेता का प्रथम और सर्वाधिक अर्थ है आध्यात्मिक नेता, नहीं कि प्रबंधक या व्यवस्थापक।
So, if they're not doing it, then they won't be able to inspire others to do it, and others may think it's not important.
तो अगर वे उदाहरणात्मक साधना नहीं करेंगे तो वे दूसरे को ऐसी प्रेरणा देने के लिए सक्षम नहीं होंगे और दूसरे सोचेंगे कि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
In fact, years ago when I was a Tamil president, I told one devotee, look, you come on, you got to get up and go to Mangalore, you're missing every morning. So well, my guru doesn't go, why should I go?
यह सच है। सालों पहले जब मैं मंदिर प्रमुख था तो मैंने एक भक्त को कहा, चलो आपको जल्दी उठना है और मंगला आरती के लिए जाना है, आप हर सुबह मंगला आरती में अनुपस्थित रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा, मेरे गुरु नहीं जाते हैं तो मैं क्यों जाऊं?
He said to me, so if for any reason, even including health, if one is not able to do these things, I say that they shouldn't be a GBC or a Tam. If they're not physically fit enough to go to Mangalarti, then they're not physically fit enough to be a GBC. Or if they're only physically fit enough to do one of the two things, then better they go to Mangalarti.
तो अगर कोई भी कारण, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सहित कोई भी कारण हो, तो भी अगर यह सब चीजें करने के लिए कोई सक्षम नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि उन्हें जीबीसी नहीं बनना चाहिए। अगर वे मंगला आरती में जाने के लिए शारीरिक रूप से ठीक से योग्य नहीं है, तो वे जीबीसी बनने के लिए भी शारीरिक रूप से योग्य नहीं है। या वे अगर शारीरिक रूप से दोनों चीजों में से एक करने के लिए ही योग्य है, तो अच्छा हो कि वे मंगला आरती में जाए।
That would or should make a, but as we often see, there are meetings of big leaders, and they hardly you'll see them present in the morning program. They're too busy talking. Of course, they have important things to talk about, but that was Srila Prabhupada's standard, which he set himself.
लेकिन जैसे हम कई बार देखते हैं कि बड़े नेताओं की मीटिंग होती है और आप उनको शायद ही सुबह के कार्यक्रमों में उपस्थित देखेंगे। वे बात करने में बहुत व्यस्त है, बेशक उनको महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करनी है, लेकिन यह मापदंड श्रील प्रभुपाद के हैं जो उन्होंने स्वयं स्थापित किया था।
Even when he was sick, he said that I also should go to Mangalarti, but because I'm translating these books, which is such an important service, that I don't do that.
Srila Prabhupada ka yah mapdan tha, har roz Shri Vigraho ka abhivadan karne jana aur class dena. Ve bimar the, tab bhi aisa karte the. Unhone kaha ki mujhe bhi Mangalarti mein jana chahiye, lekin क्योंकि मैं इन पुस्तकों का अनुवाद कर रहा हूं जो इतनी महत्वपूर्ण सेवा है, जिसकी वजह से मैं मंगला आरती में नहीं आता हूं।
So that would be a good formula which I think would enliven all the devotees if all the leaders were seen to practice, not that you transcend sadhana bhakti or...
तो ये बहुत ही अच्छा सूत्र होगा जो मैं सोचता हूँ कि ये सभी भक्तों को उत्साहित कर देगा। अगर सभी नेता अच्छी साधना करने का अभ्यास करेंगे, ऐसा नहीं कि आप साधना भक्ति करने के पार हो गए हैं।
Somehow or other, you be the symptom of a big devotee is that you're never seen in the morning program.
तो बड़े नेताओं का एक लक्षण यह है कि आप उनको सुबह के कार्यक्रमों में कभी नहीं देखेंगे।
I would have thought that you'd rather have there should be more taste for these things.
बल्कि ऐसी चीजों करने के लिए आपको ज्यादा झुकाव होना चाहिए।
Again, even to state these things can be considered as improper. It may be construed as a personal attack.
मैं जो कह रहा हूँ, ऐसी चीजों का कहना अनुचित के रूप में समझा जाएगा, शायद व्यक्तिगत आक्षेप करने के रूप में मेरी टीका की जाएगी।
But it's a good idea. I really think it's an excellent idea. All the leaders should just chant Hare Krishna with everyone else.
एक श्रेष्ठ विचार, सभी नेता को दूसरे सभी के साथ हरे कृष्ण का जप करना चाहिए.
You can't legislate purity. You can't legislate no one should have any material desires. It'd be great if you could, but well, it wouldn't, because then we'd be all robots and Krishna consciousness is voluntary. But you can legislate such things as attendance in the morning program. That can be legislated. And that is supposed to be, it is the process of purification.
आप शुद्धता का कानून नहीं बना सकते. आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं कि किसी को भी कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी यंत्र मानव बन जाएंगे और कृष्ण भावनामृत स्वेच्छापूर्ण है. लेकिन आप ऐसा नियम बना सकते हैं जैसे मंगला आरती में उपस्थिति का नियम, इसका नियम बना सकते हैं. यह होना ही चाहिए. यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है.
हरे कृष्ण. एनी अदर क्वेश्चन कमेंट्स?
हरे कृष्ण. दूसरा कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी?
या यू आर सेकंड इन क्यू. वी डोंट हैव एनी अदर माइक. ऑलराइट, प्लीज स्पीक एंड आई विल रिपीट द क्वेश्चन.
हाँ, आप लाइन में दूसरे थे. आप बोलिए और मैं प्रश्न का पुनरावर्तन करूंगा.
How do we purify the maximum possible?
हम अधिकतम संभव शुद्ध कैसे हो सकते हैं?
Well, we can only take to the process and pray for Krishna's mercy. We don't actually, although we conventionally we say that we are purifying ourselves.
हम प्रक्रिया को अपनाकर ही और कृष्ण की कृपा के लिए प्रार्थना करके ही शुद्ध हो सकते हैं. वास्तव में हम खुद पवित्र नहीं हो पाएंगे. हम प्रथानुसार कहते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं.
But actually, shindatang swakata krishna punya shravana kirtanaha hridyantastho hiya bhadrani vidhunoti suhritsata. Krishna is the purifier. We can submit ourselves to him in the matter of hearing and chanting about Krishna. And Krishna, being very kind to the devotees, purifies them. We have to submit ourselves to Krishna.
लेकिन वास्तव में श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्य भद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम. कृष्णा शुद्ध करने वाले हैं. हमें अपने आप को कृष्ण के बारे में श्रवण एवं कीर्तन करने के मामले में कृष्ण को प्रस्तुत करना है और कृष्ण भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु होने से उनको शुद्ध करते हैं. हमें अपने आप को कृष्ण के अधीन प्रस्तुत करना है.
Then the someone else, who's that, Babu? Yeah.
प्रश्न के लिए कोई और?
What is fanaticism?
Fanaticism, यानी कट्टरतावाद क्या है?
Well, no one ever fell down from being too strict. Too strict and not strict enough are two interpretation. What's the word? Translations of the word niyamagraha.
ज्यादा सख्त होने से किसी का भी पतन नहीं होता. ज्यादा सख्त और पर्याप्त सख्त नहीं, ये दो नियमाग्रह शब्द का अनुवाद है.
Among the six practices or attitudes which cause the destruction of bhakti, one of them is नियमाग्रह.
छह कार्य और मनोभाव है जो भक्ति के विनाश के कारण है. उनमें से एक शब्द नियमाग्रह है.
Niyama means rules, and niyamagraha can be translated either as niyama agraha, not to follow the rules, not to be strict, or niyamagraha, to be enthusiastic about the rules. In other words, to be strict just for the sake of being strict.
नियम का अर्थ है नियम और नियम आग्रह का अनुवाद या तो नियम आग्रह के रूप में किया जाता है जिसका अर्थ है नियमों का पालन नहीं करना सख्त नहीं होना या नियम आग्रह का अर्थ है नियमों के बारे में उत्साहित होना दूसरे शब्दों में सिर्फ सख्त बनने के लिए सख्त होना
So that actually does constitute a type of fall down in itself is one if one is more rule conscious than Krishna conscious.
यह अपने आप में पतन होने के प्रकार को निर्माण करता है अगर कोई कृष्ण भावनामृत की जगह नियम में ज्यादा सचेत है तो
But in general, the rules are there because we're supposed to follow them. They're not there so that we can deliberately try and avoid them. Or they're not there just... Oh, we shouldn't think they're there for others and not for me. They're meant for all devotees.
लेकिन सामान्य रूप से नियम है क्योंकि हमें उसे पालन करना है. ऐसा नहीं कि नियमों को जानबूझकर टालना है. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नियमों दूसरों के लिए हैं और मेरे लिए नहीं है ये सभी भक्तों के लिए है
सो एट लीस्ट इन आवर मूवमेंट वी कैन थिंक ऑफ मेनी केसेस ऑफ दोज हु फॉलन डाउन बाय नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट बट आई कांट थिंक ऑफ एनी मे बी बिकॉज आई एम बायस्ड बट मे बी समवन एल्स कैन ऑफर सम केस ऑफ Someone has fallen down by being too strict.
तो कम से कम हमारे आंदोलन में हम बहुत मामले के बारे में सोच सकते हैं जो सख्त नहीं बनने से पतित अवस्था में गिर गए हैं लेकिन सख्ती से पालन करने वाले भक्त का पतन का कोई मामला मुझे याद नहीं है हालांकि मैं सख्ती के लिए झुका हुआ हूँ लेकिन कोई अन्य कोई मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसमें किसी भक्त का पतन ज्यादा सख्त होने से हुआ हो
Devotees have been fanatical. Being fanatical and being strict. I've discussed that in the book on speaking strongly and Srila Prabhupada's service. Because those who try to act seriously in Krishna consciousness are often accused of being fanatical.
भक्तों जो कट्टरवादी होते हैं भक्तों का कट्टरवादी होना और सख्त होना मैंने मेरी पुस्तक स्पीकिंग स्ट्रांगली इन श्रील प्रभुपाद सर्विस में इसकी चर्चा की है क्योंकि वे जो शक्ति से प्रचार करने का प्रयास करते हैं उन पर कई बार कट्टरवादी का आरोप लगता है
इन श्रील प्रभुपाद्स डेफिनेशन which was he actually derived that from श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर who possibly took it from someone else the parampara
Srila Prabhupada ki vyakhya mein jo vastav mein unhone bhakti siddhant saraswati thakur se prapt ki hai jinhone dusre ki parampara se sambhavatah yah vyakhya li hai
definition is that philosophy without religion is mental speculation and religion without philosophy is sentimentalism or sometimes fanaticism
vyakhya hai dharma ke bina tatva gyan mansik parikalpana hai aur tatva gyan ke bina dharma bhavukta hai ya kabhi kabhi dharmandhita ya kattarvad jaisa hai
so by this definition fanaticism is religion without knowledge so if You know, A plus B equals C, so C minus B equals A. So if someone is sincerely trying in Krishna consciousness and has knowledge of the process and is not simply a blind dogmatic follower and follows seriously and strictly, that can't be called fanaticism, according to that definition.
तो इस व्याख्या से कट्टरता ज्ञान के बिना का धर्म है अगर a प्लस बी बराबर सी है तो c माइनस बी बराबर ए होगा तो अगर कोई गंभीरता से कृष्ण भावनामृत में प्रयास कर रहा है और उसे प्रक्रिया का ज्ञान है और वो सिर्फ अंधा मताग्रही अनुयायी नहीं है और वो बहुत गंभीरता एवं शक्ति से पालन करता है, तो उसे उस व्याख्या के अनुसार कट्टरवादी नहीं कहा जा सकता।
Fanaticism means to be doggedly attached to something without any understanding.
कट्टरवाद का अर्थ है किसी चीज के साथ कोई समझन के बिना हठिलेपन से आसक्त होना।
Yeah, anything else? Otherwise, we can finish. Hare Krishna.
और कुछ? अन्यथा हम यह पूरा करें। हरे कृष्णा।
Mataji, which Mata? I mean, we supposed to see all women as our mother, but you could say a Mataji or a specific one. Okay, a Mataji. You don't know her name. All right. Go on. Is it a good idea to chant more rounds? Yes.
ज्यादा जप करना क्या यह अच्छा विचार है? हाँ.
Instead of going to Mangala Arati, no.
मंगला आरती में जाने की बजाय ज्यादा जप करना क्या यह अच्छा विचार है? नहीं.
We have very clear and specific instructions from Srila Prabhupada in this regard. Why speculate?
इस बारे में श्रीला प्रभुपाद से विशिष्ट आज्ञा में हम बहुत स्पष्ट है, फिर कल्पना करने की क्या आवश्यकता है?
I mean, there could be a case for it if you're bedridden. If you have a broken leg, just broke your leg, then if you can't go to Mangalati, then chant more rounds.
कभी ऐसा मामला हो सकता है कि आप बिस्तर पर पड़े हुए हो, अगर आपने अपना पैर तोड़ दिया है, आप अपना पैर तोड़ दीजिए, आप शय्याग्रस्त है और आप मंगला आरती नहीं जा सकते हैं, तो आप ज्यादा जप कीजिए।
But in general, once you go to Mangala Arati, I must admit, I was late this morning for Mangala Arati. Bodily disorder.
लेकिन सामान्य रूप से भक्त को मंगला आरती जाना चाहिए। कुछ शारीरिक अव्यवस्था के कारण मैं आज सुबह मंगला आरती में देर से आया था।
Then you can bring up millions of questions. Is it all right to do this or that or something else?
आप लाखों प्रश्न ला सकते हैं। ये करना या वो करना क्या ठीक है? या ऐसा ही कुछ और प्रश्न हो सकते हैं।
We have a very simple program. It's all laid out there by Srila Prabhupada. Just follow it. It's much easier than trying to speculate, do this, do that, do something else.
हमारे पास बहुत ही सरल कार्यक्रम है। यह सब श्रीला प्रभुपाद द्वारा निर्धारित किए गए हैं और सिर्फ इसका पालन करो, ये करो, वो करो और कुछ करो। ऐसी मनोकल्पना करने की जगह यह श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए कार्यक्रम बहुत ज्यादा सरल है।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।